ओम शांति। ज्ञान सरोवर की सुंदर तपस्या स्थली में शुद्ध पवन के बीच आप सब अच्छी तपस्या कर रहे हो। बहुत सुंदर अनुभव इस परिसर में आते ही होते हैं। बाबा ने हम सब के लिए ज्ञान सरोवर का इतना सुंदर स्थान बनवाया, लेकिन जब यज्ञ स्नेही की बात आई तो मुझे वो यज्ञ स्नेही आत्माएं आई याद, जिनके स्नेह के बल से ही ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ। वैसे तो ये जमीन जो थी जहां पर ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ है, एक साल गांव है यहाँ बाजू में, उनकी चरागाह की जमीन थी, जंगल ही था, लेकिन बाबा की प्रेरणा से एक दिन सवेरे सवेरे जब बाबा विदाई ले रहे थे सुबह सुबह 6 बजे, तो विदाई लेकर के पहले तो एक बार ऐसे लगा चले गए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने आंख ऐसे खोल के दादी जी को अपने पास बुलाया, दादी प्रकाशमणि जी को, और ऐसे ही इशारे में कहा कि इधर जो दूध वाले आते हैं उनके पास एक जमीन है, अगर आपको चाहिए तो देखना। दूध वाले यहाँ से हमारे पांडव भवन में दूध पहुँचाते हैं, अभी भी जाता है थोड़ा, अभी तो ऐसे डेयरी से ही आता है, लेकिन पीस पार्क जो लिया वो उरिया गांव के गांव वासियों से, वहाँ से दूध आता था, वो उरिया में पीस पार्क बनाया, और इस साल गांव के किसानों ने, यहाँ के निवासियों ने ये जमीन दी। उसी दिन 9 बजे यहाँ का एक दूध देने वाला भाई दूध देने के लिए आया और कहता है कि अगर आपको कोई जमीन चाहिए तो हमें बताना। 6 बजे बाबा बोल के जा रहे हैं और 9 बजे वो आकर के, जो हमारे दूध डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे बल्लभ भाई, उनको बोला कि अगर आप लोगों को कोई जमीन चाहिए तो हमारे पास है गांव वालों की, हम देना चाहते हैं। तो दादी जी को भाई ने उसी समय बुलाया, क्योंकि प्रयास तो चल रहा था कि कहीं बड़ा स्थान बनाया जाए। तो दादी जी ने कहा सवेरे बाबा बोल के गए हैं और ये 9 बजे आकर के सामने से ऑफर दे रहा है, तो चलो देखो कहाँ है। अब यहाँ तो जंगल था, पगडंडी थी, रास्ता नहीं था गाड़ियों का आने जाने का, स्कूटर में मोटरसाइकिल में पैदल लोग आते थे। तो हमारे भाई लोग यहाँ आए, देखा है तो बहुत जंगल है, सारे झाड़ियाँ हैं, फिर भी बाबा का इशारा था तो बहुत ठीक ठीक रेट में इसको हम सब के नाम से, 10-12 भाइयों के नाम से जमीन ले लिया। लेकिन लेने के बाद इसको ट्रांसफर करना, यहाँ मकान बनाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उसने ही आत्मा याद आई जिसने इस जमीन को कन्वर्ट करवाया पूरा ही। वो थे हमारे उस समय के राजस्थान के गवर्नर चन्ना रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के थे, और बहुत बाबा से, अपने यज्ञ से, दादियों से बहुत स्नेह था। मुरली भी कभी कभी सुनते थे, लेकिन अपनी पोस्ट पर थे, पहले वो यूपी के गवर्नर थे, फिर राजस्थान के गवर्नर बने, फिर उन्होंने अपने हाथ में इसका बीड़ा लिया और ये जमीन ट्रांसफर करवाई, इसका फाउंडेशन डाला, और फाउंडेशन डालते डालते गवर्नर आए हैं तो उनकी तरफ से उन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, नक्शा ही नहीं रोड का है, तो उन्होंने इसी सभा में यहीं ही बोल दिया जब फाउंडेशन डालने आए, कि इस जमीन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रोड बनेगी, वो पैसा दे, नक्शा नहीं है, रोड नहीं है, ऐसे ही टेम्परेरी रास्ता बनाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ रोड बनी, भवन बना, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन में दादी क्वार्टेज बन गया था, जहाँ पर अभी दीदी रहती हैं। उद्घाटन करने के बाद उनका ट्रांसफर हुआ। यज्ञ स्नेही बाबा के बच्चे सदा ही ये सोचते हैं, मैं कुछ न कुछ अपना बीज बोऊं, सहयोग दूं, और सहयोग से ही इतना बड़ा यज्ञ विस्तार को पाया है। सबके सहयोग से ही, बाबा कहता है बूंद बूंद से तालाब बनता है, तो ये बूंद बूंद से तालाब बना है। जब इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया तो दादी जी ने एक ही डायरेक्शन दिलवाया सबको कि सबको रोज एक रुपया निकालना है, रोज एक रुपया निकालना है इस भवन के लिए, ज्ञान सरोवर के निर्माण के लिए। और सचमुच बाबा के उस समय तो 1.5-2 लाख ही बाबा के बच्चे थे, अभी तो लाखों में 10 लाख से ऊपर हैं। लेकिन उस समय जो भी बच्चे थे सब ने इतना प्यार से यज्ञ स्नेही और सहयोगी बन करके एक एक ईंट लगाई, जो पूरे ब्राह्मण परिवार की ईंट यहाँ लगी। एक दिन की बात है, एक महाराष्ट्र की तरफ से माता जो झाड़ू पोछे का काम करती थी, बहुत छोटा काम, बहुत गरीब माता, कभी मधुबन नहीं आई थी, लेकिन उसको भी पता था, मुरली सुनती थी कि बाबा के घर में ज्ञान सरोवर बन रहा है, तो मैं भी अपनी एक ईंट लगाऊं। अब वो ईंट लगाने के लिए उसने काफी समय मेहनत की, पैसा बचाया और एक छोटी सी सोने की अंगूठी बनवाई और अपनी दीदी को, टीचर को कहती है, दीदी हमारी एक ईंट ज्ञान सरोवर में लगवा देना, ये मेरी मेहनत की कमाई का एक अंगूठी है। तो जब वो यहाँ लेकर के आई और दादी जी को बताया कि ऐसे ऐसी माताएं इतना दिल से, स्नेह से इस ज्ञान सरोवर के निर्माण के लिए ये अंगूठी भेजी है, तो दादी जी को बहुत नशा चढ़ा, बहुत खुशी हुई, और वो क्लास के बीच में अंगूठी पहनी और पहन करके पांडव भवन में, ओम शांति भवन में सबको दिखाते हुए डांस किया कि देखो ऐसे ऐसे गरीब बच्चे जो अपनी मेहनत की कमाई से एक एक रुपया बचा करके बाबा के घर में अपनी ईंट लगा रहे हैं और ये ईंट आई है। तो ऐसे उस समय कोई इतना विदेश या देश किसी से, दादी कहती थी मांगना नहीं है, बनाना जरूर है लेकिन मांगना नहीं है। और यही डायरेक्शन से, एक एक रुपए के डायरेक्शन से, और 1-1.5 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य संपन्न हो गया। आप समझ सकते हैं, कोई कोई पूछते हैं, कल मैं एक क्लास करा रहा था, बॉम्बे का नया क्लास आया है, नीचे आया था, तो उनका एक प्रश्न था, ये यज्ञ चलता कैसे है, क्योंकि देखते हैं कि इतनी सब व्यवस्थाएं हैं, खाना पीना सब है, इतना सब सोफे कुर्सी हैं, इतनी व्यवस्था है, सुंदर ढंग से साफ स्वच्छ स्थान, देख करके मन में आता है ये सब कैसे चलता है, कौन डोनेशन देता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं। तो मैंने एक बाबा की बात सुनाई कि बाबा कहते थे, अरे बच्चे, जिसके 5-6 बच्चे भी कमाने वाले होते हैं, उनके माँ बाप से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है आपका खर्चा कैसे चलता है, और इस माँ बाप को तो इतने हजारों बच्चे कमाऊ पूत हैं। आप सब कमाऊ पूत हैं ना, कमाने वाले हैं, और कमाने वाले बच्चे अपने माँ बाप के परिवार को, अपने घर को चलाने के लिए कोई डोनेशन या चंदा देते हैं क्या? तो अधिकार से आते हैं, अपना सहयोग देते हैं, पालना लेते हैं, सबके सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न रीति से चल रहा है। कोई से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक समझता है जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उस स्थान पर मुझे कुछ न कुछ बाबा के भंडारी में सहयोग देना ही है। तो इसलिए सबके सहयोग से इतना सुंदर कार्य चला। पहले ओम शांति भवन बना, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल तो बहुतों के सहयोग से बना है, उसमें तो कईयों का डोनेशन भी आया। लेकिन ये ज्ञान सरोवर, उसके बाद शांति वन, उसके बाद मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मान सरोवर, कितना बड़ा विस्तार होता गया। कैसे हुआ? सब स्नेही बाबा के बच्चों के सहयोग से हुआ। कभी भी कोई से कहना नहीं पड़ा। चाहे ओम शांति भवन जब बना तो वहां पर पांडव भवन में जब हम लोग थे, 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि रीछ, कभी कभी अनेक प्रकार के और जानवर, जंगली जानवर रोड पर आ जाते। तो दादी कहती थी 8 बजे के बाद कोई पांडव भवन से बाहर नहीं जाएगा, बंद, दरवाजा बंद, क्योंकि बहुत जंगल था। अब वो पहाड़ चट्टाने सामने ही थी पांडव भवन के, और एक भाई हमारा स्नेही सहयोगी ही आया, सामने से जमीन लिया, चुपचाप अपने नाम से ही ले लिया, और फिर दादी जी को कहता, ये दादी जी यज्ञ में सफल कर दो। अब वो जमीन आई, दादी जी ने कि यहाँ क्या बनाएंगे, और इतना ऊंचा पहाड़ है, इसको कैसे तोड़ेंगे। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत उसको ठीक किया गया, और इतना सुंदर ओम शांति भवन निर्माण हुआ। सुखधाम ऐसे ही निर्माण हुआ। वहाँ एक बाबा का बच्चा महाराष्ट्र का था, अभी याद किया था मैंने उसका, गोवर्धन दादा थे, उन्होंने ही ऐसे संकल्प किया, ये गोसाया सुखधाम की जमीन ऐसे पड़ी है, मैं ले लेता हूं। ऐसे बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चों ने अपना तन मन धन, जो उनकी पास शक्ति थी, वो बाबा के इस यज्ञ में लगाई, और उस यज्ञ में लगने से आज इतना बड़ा यज्ञ का विस्तार हुआ। सेंटर्स इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं चारों तरफ पूरे भारत के अंदर। पहले तो बाबा कहते थे, बच्चे एक हाल ले लो, किराए पर ले लो, क्लास सवेरे करा दो, उनकी सेवा करके मकान बना के क्या करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं इतने सैकड़ों सेंटर्स बाबा के अपने बने हुए हैं, और कितना प्यार से वहां पर सब बाबा के बच्चे अपने तन मन धन का सहयोग दे करके बनवाते हैं। इसलिए सहयोगी जो यज्ञ स्नेही बच्चे हैं वो सहयोगी बन जाते हैं, और वो किसी से पूछते नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई कहे तो करे। बाबा एक स्लोगन देते हैं, कहने से जो करे वो मनुष्य है, और जो कहने से न करे, कहने से भी न करे हो, बाबा उसका नाम नहीं लेते हैं। कभी कभी कुछ बोल देते हैं, बिना कहे करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी न करे वो डैश डैश नहीं बोलना है, है? इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि जब बाबा किसी बच्चे के आगे कहता है तेरा ही सब कुछ है, बच्चों का ही सब कुछ है, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है, जहां पर कोई भी ऐसी चीज की कमी है उसको खुद भरते हैं, भरपूर करते हैं। तो इस तरह से यज्ञ स्नेही बच्चों के सहयोग से इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा यज्ञ विस्तार को पाया है। लेकिन आज बाबा बड़ा अच्छी बात मुरली के अंदर कह रहे थे कि कोई भी चीज के शुद्धिकरण के लिए अग्नि की जरूरत होती है। अग्नि में अगर वो चीज डाल दी जाती है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन स्थूल आग और स्थूल चीज के शुद्धिकरण के लिए स्थूल अग्नि जरूरी है। हमारे संस्कार अशुद्ध हो गए, विकारी हो गए, पतित हो गए, उन संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए याद की, योग की अग्नि चाहिए, और वो अग्नि प्रज्वलित होती जहां है उसको कहते हैं यज्ञ। जिस स्थान पर ज्ञान और योग की अग्नि प्रज्वलित है वो है रुद्र भगवान का यज्ञ। भगवान ने स्वयं, रुद्र भगवान ने ये यज्ञ रचा, और इस यज्ञ में बच्चों की आहुति, पुराने संस्कारों की, पुरानी आदतों की, जो भी कमी कमजोरी हैं, उन सब की आहुति पहले पड़े, तब पूरे विश्व की आहुति इसमें पड़ेगी। और विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। कोई भी वायुमंडल को परिवर्तन करना होता है, कोई भी विघ्न को हटाना होता है, उसके लिए यज्ञ की रचना करते हैं, यज्ञ रचते हैं, और यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण होते हैं। रचने वाला, यज्ञ कराने वाला अलग होता है, मालिक अलग होता है, लेकिन यज्ञ में जो आहुति देते और दिलवाते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, और इस ब्राह्मण स्वरूप से, अपने पवित्र स्वरूप से पहले हम अपनी आहुति देते हैं, अपने संस्कारों को योग अग्नि से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और जब हमारे संस्कार शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं तब हम दूसरों की आहुति इसमें डलवाते हैं। इसलिए इस यज्ञ के अंदर हम सबको पहले खुद की आहुति डालनी है, अपने आप को देखना है। कोई भी ऐसे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, स्वभाव, मुझ आत्मा को इस ब्राह्मण जन्म में विघ्न रूप तो नहीं है। जब हम स्वभाव और संस्कार कहते हैं पहले उसकी आहुति डालनी। स्वभाव जो आज देहमान वाला बना हुआ है, कैसे बना सब जानते हो। स्वभाव का निर्माण कैसे होता है? जिस परिवार में, जिस वातावरण में बच्चे का जन्म होता है, जिस प्रकार की उसकी पालना होती है, उस जिस प्रकार का उसका रहन सहन, खान पान होता है, धीरे धीरे वो स्वभाव उस आत्मा के अंदर आता जाता है, उसका नेचुरल नेचर बनती जाती है। आप देखो जो अच्छे घरों में पले हैं, जायल घरों में पले हैं, उनके स्वभाव में कहीं पर भी किसी की वस्तु पर, किसी की चीज पर नजर नहीं जाती। कोई कितना भी अच्छी चीज खा रहा हो, कोई अच्छी चीज पहन करके रह रहा हो, बहुत ठाट बाट से रहे हो, लेकिन जो रायल संस्कार वाली आत्माएं हैं उनकी नजर उनमें नहीं जाती है। उनका भाग्य है, उनकी तकदीर है, मेरे पास जो है बहुत है। लेकिन जिनके संस्कार स्वभाव ऐसे बने, जिनकी पालना ही ऐसी हुई है गरीबी में, वो जो चीज देखते हैं उन पर नजर जाती है, ये भी मेरे पास हो, इनके पास है तो मेरे पास भी हो, इसके पास है तो मेरे, वो स्वभाव ऐसा बना हुआ है। कोई का बोलने का स्वभाव है, कोई का किसी की बात को कट कर देने का स्वभाव है, कोई का चलते फिरते खाने का स्वभाव है, किसी की चीज पर नजर डालने का स्वभाव है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो पुराने स्वभाव बने हैं, जो आपको लौकिक जन्म से स्वभाव मिले हैं, लौकिक पढ़ाई से, लौकिक पालना से स्वभाव बने हैं, उन स्वभावों को परिवर्तन करो, उन स्वभावों को इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। और जब वो स्वाहा करोगे तो स्व का भाव आत्मा का भाव है, स्व माना आत्मा, और जब आत्मा के भाव से हम एक दूसरे को देखते हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो हमारी दैहिक भावनाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो पुराना स्वभाव है, जो पुरानी नेचर है, उसको हमें यज्ञ में अर्पित करना है, और अपना नेचुरल स्वभाव जो आत्मा का स्वभाव है, उस आत्मिक स्वभाव से एक दूसरे के संबंध संपर्क में आना है। अब है पुराना संस्कार, जिसको हम पुराना कहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे पुराना नहीं है, ये मध्यकाल का है। द्वापर युग से, जब से रावण राज्य का प्रारंभ हुआ, जब से आप आत्माएं अपने स्वस्वरूप स्वधर्म को भूल करके देहमान में आई, तब से जो संस्कार बने वो विकारी संस्कार, पति संस्कार, देह को देखने के, देह के बारे में चिंतन करने के, देह के बारे में ही सब विचार करने के, वो संस्कार पुराने नहीं है, वो मध्यकालीन विकारी संस्कार हैं। अब संगम युग पर बाबा चाहता है मेरे बच्चे इन संस्कारों को इस यज्ञ में स्वाहा कर दें। अब इसको स्वाहा कैसे करेंगे? इसके लिए अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। हम सब आत्माओं के आदि और अनादि संस्कार बहुत स्वच्छ संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, देव घराने के संस्कार हैं। जब वो संस्कार जो पुराने हमारे हैं उनको हम इमर्ज कर लेंगे, तो ये जो बीच के मध्य के संस्कार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बार बार अगर कोई आत्मा विकारों को जीतने के लिए बहुत युद्ध करती है, मेहनत करती है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कई सोचते हैं बाबा के बच्चे, क्रोध के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कई काम विकार को जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को जीतने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते कोई करेगा ही नहीं कुछ, क्रोध नहीं तो रोब तो चाहिए, थोड़ा सा आंख तो दिखानी पड़ती है, जोश से बोलना पड़ता है। और बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अभी काम और क्रोध को नरक का द्वार समझ करके इन पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लें। आज भी बाबा ने कहा काम विकार को जीतने में मेहनत लगती है, क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति नहीं बनी है, जब तक हम इस देह भान से, इन कर्मेंद्रियों से डिटैच रहने का अभ्यास नहीं करते हैं, अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं है, तब तक ये इंद्रिय सुख आत्मा को आकर्षित करता है। और बहुत काल तक हम सब आत्माएं इस इंद्रिय सुख के गुलाम बन गई हैं। संगम पर इस थोड़े समय में हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें और उसके लिए अशरीरी बनने का अच्छा अभ्यास करें। अगर हमें इस काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करनी है, इस विकार को अग्नि में स्वाहा करना है, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ता अंत तक, कितने भी पुराने बन जाए। कितना समय से ज्ञान योग चल रहा है, कोई काम विकार से हार खाता है और क्रोध से तो 90% से ऊपर है, तो चलते चलते इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, आंख तो दिखानी पड़ेगी, जोर से तो बोलना पड़ेगा, रोब से तो रहना ही पड़ेगा। बाबा कहता बच्चे इस दुनिया में इससे तो काम बिगड़ रहा है, बनता नहीं है, इससे तो आप आत्मिक प्यार से, स्नेह की शक्ति से, शांति की शक्ति से कोई काम निकाल सकते हो, इसलिए क्रोध महाशत्रु समझ करके आप शीतलकाया वाले बनो। जितना आप अपने शांत पवित्र प्रेम स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना ये क्रोध रूपी भूत समाप्त हो जाएगा। अब वर्तमान समय के हिसाब से हमारे जीवन में जो उत्तेजनाएं हैं, आवेग है, आवेश है, उत्तेजना आती है, चिड़चिड़ापन आता है, जोश में बोलते हैं, गुस्से में शब्द निकल जाते हैं, कटु वचन बोल देते हैं, बाबा कहते बच्चे इसी यज्ञ में इसकी आहुति दे दो। ये यज्ञ विघ्न है, यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न है, और ऐसे यज्ञ के विघ्न रूप बनने वाले बच्चे यज्ञ रक्षा नहीं कर सकते। क्रोध से यज्ञ की रक्षा नहीं होती, काम विकार वाले यज्ञ के रक्षक नहीं बन सकते। इसलिए अगर कोई कोई यज्ञ रक्षक बनना है तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जितनी पवित्र शुद्ध विचारों में आत्मा रमण करती है, उसके अच्छे वाइब्रेशन इसकी रक्षा करते हैं। आज कोई पहरे पर बैठा है रक्षक बन करके, और वो समझे मैं यज्ञ रक्षक हूं, बाबा ने मुझे पहरे की ड्यूटी दी है, बाबा कहता है यज्ञ रक्षा इससे नहीं होगी। ठीक है, आपको देखने से लोग थोड़ा भयभीत रहेंगे, कोई ऐसे चोरी नहीं करेगा, अंदर नहीं घुसेगा, भाई पहरा बैठा हुआ है, पहरे पर कोई है, लेकिन अगर आपकी पवित्र भावनाएं हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छा आभा मंडल है, तो सबसे बड़ी रक्षा वर्तमान समय है जो इस वायुमंडल में अशुद्ध आत्माएं हैं, जो प्रवेश करके व्यक्ति को परवश कर रही हैं, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है व्यक्तियों के, वो आत्माओं को योग लगने नहीं दे रहे हैं। आवश्यकता यहां पर है, थोड़ी गहरी बात सुना रहा हूं, इस पर ध्यान देना, यज्ञ रक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि यज्ञ निवासियों की भी रक्षा हो, वो यज्ञ में रह रहे हैं, उनका मन अच्छा रहे, उनकी विचारधाराएं पवित्र रहें, उन्हें दुनिया की कोई भी आकर्षण आकर्षित न कर पाए, वो कभी पराधीन न बन जाएं, उसके लिए हम सब यज्ञ रक्षक बच्चों का कर्तव्य बनता है, हम अपने पवित्र शुद्ध वातावरण में अपने पवित्र वाइब्रेशन से इस किले को मजबूत बनाएं। ये किला है, यज्ञ एक किला है, जैसे किले में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर वाले को पता नहीं चलता कौन कहां पर रह रहा है, और अंदर वाले को सब पता है बाहर क्या चल रहा है। यहां राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, बड़े बड़े ऊंचे किले बनाए, अभी तो बहुत टूट फूट गए हैं, फिर भी हैं, लेकिन जब शत्रुओं ने आक्रमण किए, कोई उस किले को भेद नहीं पाया, कोई उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसा किला बनाया गया। लेकिन जहां पर हार हुई, दो कारण बने, जहां पर किसी किले पर किसी शत्रु ने विजय प्राप्त कर ली, उसका एक मूल कारण बना, वहां राजा किसी व्यसनों के विकारों के परवश था, अधीन था। जब ऐशो आराम के अंदर वो मग्न हो गए, आपने शायद लखनऊ के नवाब की बात सुनी होगी, शत्रु सामने खड़े हैं, इतनी नवाबी थी उस समय, जो कहते हैं लोगों ने, उसके कर्मचारियों ने, उसके मंत्रियों ने कहा यहां से हट जाओ नहीं तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। कहता जूता पहनाने वाला कोई नहीं है, इतनी नवाबी थी। तो ऐसे जब शत्रुओं के आक्रमण हुए और राजाएं महाराजाएं अपने ऐशो आराम में अपने अहंकार में डूबे थे, तो उनको बंदी बना लिया गया। दूसरा, अगर किले में कोई एक भी ऐसा होता है जो घर का भेदी होता है, इधर की उधर करने वाला, जिसको बाबा कई बार एक नाम देते हैं ट्रेटर, पल रहा है, खा रहा है, रह रहा है, लेकिन इधर की बात उधर कर रहा है, घर का भेदी जिसको कहा जाए, उसके आधार से जितने यज्ञ, जितने किले थे राजाओं के, उन पर दूसरों ने विजय प्राप्त कर ली। आज अगर कोई भी यज्ञ के अंदर विघ्न या रुकावट आती है, परीक्षाएं आती हैं, उसके भी यही दो मूल कारण हैं। कई आत्माएं चलते चलते अपने नियम और मर्यादाओं को छोड़ करके कहीं न कहीं किसी न किसी विकार के अधीन हो जाती हैं, तब विघ्न आते हैं। और दूसरा, कोई न कोई है यज्ञ में, लेकिन यज्ञ की बातों को, जो घर की बातें, वो बाहर लीक करता है, तब यज्ञ के आगे विघ्न आते हैं। इसलिए अगर हम यज्ञ रक्षक बनना चाहते हैं, तो यज्ञ रक्षक बच्चों का कर्तव्य बनता है बहुत शुद्ध पवित्र आभा मंडल के अंदर रहना। उसके लिए दो विशेष बातों पर ध्यान चाहिए। यज्ञ रक्षक बनना, वैसे तो बाबा ही इस यज्ञ का रक्षक है, रखवाला है, कोई कुछ भी करे उसके यज्ञ को आँच आने वाली नहीं है, यज्ञ उसका है। यज्ञ पिता, यज्ञ माता, जिसने यज्ञ की रचना की है, जो यज्ञ रक्षक हैं, उस यज्ञ में अगर कोई ऐसा करता है तो अपने ऊपर ही वो बोझ लेता है, श्राप लेता है। अगर कोई यज्ञ की संभाल करता है, यज्ञ की रक्षा करता है, तो माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरे राइट हैंड हैं, मेरी भुजाएं हैं, जो यज्ञ की इतनी संभाल कर रहे हैं, इसको हर समय हर बात में उसकी यज्ञ रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं यज्ञ मन इच्छित फल देता है, कामधेनु मां सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती है। तो यज्ञ पिता, यज्ञ माता है। माता कौन है? हमारी कामधेनु मां है, जगदम्बा मां है। उसके यज्ञ की किसी बच्चे ने प्यार से संभाल की है, एक एक पैसे की संभाल की है, एक एक चीज की संभाल की है, यज्ञ पिता उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर यज्ञ की चीजों को लुटा रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो उसको गुप्त रीति से श्राप भी मिलता है, उसकी स्थिति कभी ऊंची नहीं बन सकती। इसलिए बहुत अटेंशन देना है कि यज्ञ पिता ने विश्व परिवर्तन के लिए यज्ञ रचा है, सतयुगी दुनिया की ओर लाने के लिए, कलयुगी दुनिया की आपदाओं को समाप्त करने के लिए इस रुद्र यज्ञ की स्थापना की गई है। इस यज्ञ की संभाल करने के लिए इतने ब्राह्मण रखे गए हैं, उन ब्राह्मणों की निजी धारणाएं, उसमें भी मूल पहली बात है, हर एक आत्मा को जो यज्ञ रक्षक बनने का संकल्प करे, वो पहले स्वरक्षक बने, पहले स्वयं स्वयं की रक्षा करना जान सीख जाए कि मुझे अपने को कैसे सुरक्षित रखना है। कोई भी विकारी माया का संकल्प विकल्प मुझ आत्मा को कहीं भी परास्त न कर दे, अधीन न बना दे, इस पर बहुत ध्यान देना। हर एक समझे कि मैं पहले अपनी रक्षा करना सीखूं, यज्ञ रक्षा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, कोई कहीं से संकल्प वार कर रहा है, कोई कहीं माया वार कर रही है, कभी छाया वार कर रही है, भटकती हुई आत्माएं वार कर रही हैं, माना मेरे संकल्प बहुत कमजोर हैं, विकारी हैं, पतित हैं, कहीं ना कहीं कामना वाले संकल्प हैं। हम अपने संकल्पों को बड़ा शुद्ध और पवित्र बनाएं, अपने आभा मंडल को बहुत शक्तिशाली बनाएं, जितना हो सके शुद्ध संकल्पों में रहने की आदत डालें। जो स्वरक्षक है वो कभी भी पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में नहीं आ सकता। अगर वो पर चिंतन कर रहा है, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, या कोई की मत का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहा है। और जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है वो यज्ञ रक्षक कैसे बनेगा। इसलिए पहली आवश्यकता है हम सब ब्राह्मण बच्चों को, केवल समर्पित की बात नहीं, लेकिन जो भी बाबा के बच्चे हैं, पहले शुद्ध संकल्पों से, बहुत अच्छे चिंतन, सकारात्मक चिंतन के आधार से, विकारों से, बुराइयों से, भटकती हुई आत्माओं से, बीती हुई बातों से स्वयं की सुरक्षा करें। उसके लिए अपना उरा बनाएं, अपने पवित्र विचारों का आभा मंडल बनाएं, अपने इस शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करें, आकारी शरीर में रहने का अभ्यास करें। अब इसके लिए कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं, इसमें हमें खुद को खुद करना पड़ेगा। जितना कोई आत्मा बिल्कुल हल्की लाइट रहती है, अपनी सब जवाबदारियां, अपने सब बोझ बाबा को अर्पित करके, बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहने वाली आत्मा, उसका ओरा, उसका आभा मंडल, उसका सूक्ष्म शरीर इतना शक्तिशाली, इतना स्वच्छ पवित्र रहता है, जिसके अंदर कोई भी अशुद्धि, चाहे वो भटकती हुई आत्माएं हैं, चाहे नेगेटिव वातावरण है, चाहे कोई भी बात है, उसको कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, डैमेज नहीं कर सकती। इसलिए हम सबको पहले स्वरक्षक बनना है और फिर मर्यादा का रक्षक बनना है। बाबा ने मर्यादा की लकीरें खींची है। सीता जी तब तक सुरक्षित थी जब तक उन्होंने लकीर को, उस रेखा को उल्लंघन नहीं किया, चाहे किसी भी रूप में रावण आया, लेकिन रावण सीता को अपना तभी बना सका, उसका हरण तभी कर सका, जब सीता ने अपना पैर बाहर निकाला। अगर वो रेखा के अंदर होती तो कभी भी कुछ भी रावण नहीं कर सकता था। परमात्मा बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, चारों तरफ रावण का साम्राज्य है और अनेक रूपों से वो घूम रहा है। वहां साधु वेश दिखाया गया है, लेकिन अनेक रूपों में माया का चारों तरफ पहरा है। आपने अगर जरा भी अंगूठा भी मर्यादा की लकीर से बाहर निकाल दिया तो अशोक वाटिका नहीं, लेकिन आपके लिए भी शोक वाटिका है। दुख है, अशांति है, चिंताएं हैं, वह सब शोक है, कहीं भी दुख सुख नहीं है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मर्यादा की लकीर खींची है, और उस मर्यादा की लकीर को एक नियम है, एक मर्यादाएं हैं, एक श्रीमत है। हर बात की श्रीमत मिली हर बच्चे को, सोने की, खाने की, बैठने की, व्यवहार करने की, कर्म में आने की, भोजन बनाने की, सब बात की श्रीमत सबको मिली है। पालन नंबर वार कर रहे हैं, नियम हमारे बने हुए हैं, कैसे अमृत वेले उठना है, योग करना है, कैसे अमृत वेले के बाद मुरली क्लास करना है, कैसे भोग, भगवान को भोग लगा के फिर खाना है, खिलाना है, कर्म में कैसे कर्मयोगी बन करके रहना है, नमाज शाम पर कैसे शक्तिशाली याद में रह करके मनसा सेवा करनी है, रात को सोते समय बाबा को अपना चार्ट सुना करके फिर गुड नाइट करके सोना है, ये सब हमारे नियमावली में आता है। ब्राह्मण वो है जो संपूर्ण नियमों का पालन करता है। अगर एक दो नियम पालन करता है, बाकी नहीं करता है, तो ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार नहीं है वो। भले सफेद ड्रेस और बैज पहन ले। एक बार रमणी की बात सुनाता हूँ। एक बार मेरे को दीदी ने ऐसे अचानक, दीदी मनमोहिनी शुरू शुरू में आए ना, तो एक प्रश्न में जैसे पूछा, तुम ब्रह्मा कुमार हो? तो मेरे को लगा कि पता नहीं कोई गलती हो गई है, ब्रह्मा कुमार कैसे? हमने कहा दीदी है तो ब्रह्मा कुमार। कहती है ब्रह्मा कुमार तो आजकल बहुत हो गए, सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, मैं ब्रह्मा कुमार हूं। लेकिन ब्रह्मा कुमार सिर्फ नहीं बनना, तपस्वी कुमार बनना, अपनी एक एक इंद्रियों को तपाना है। कोई इंद्रिय हमें कभी भी धोखा न दे, नुकसान न करे। ब्रह्मा कुमार तो सच्चा वो है जो इंद्रिय जीत है, वो ब्रह्मा का बच्चा है। जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली, जिसने तपस्या के बल से, आत्मिक स्थिति के आधार से कर्मेंद्रिय जीत बन गया, वो सच्चा पक्का ब्राह्मण है। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि हम पहले सच्चे पक्के ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना है, पवित्रता की मर्यादा है। हमने आज तक कभी ये बात प्रवृत्ति वालों के लिए सुनी नहीं कि घर गृहस्थ में रहो, पति पत्नी साथ रहो, लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार रहे, विकारों की आग न लगे। आज सन्यासी इतने बड़े बड़े महात्माएं अपने घरों से क्यों भागे? प्रवृत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जवाबदारियां हैं, लेकिन देखा कि इस प्रवृत्ति में रहते, पति पत्नी साथ रहते हुए पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि ये तो आग है, और आग और कपूस एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। एक ही सूर्य विश्वविद्यालय दुनिया का यही एक केंद्र ऐसा है जहां पर बाबा ने हम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रह के, प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र जीवन जीना सिखाया। ये नहीं कहा छोड़ दो पति को, ये नहीं कहा तुम पत्नी को छोड़ दो, घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन कमल फूल के समान रहो। जरा भी कहीं कोई भी कीचड़, विकारों का कीचड़ आपकी स्थिति को डगमग न करे। रचना रची है उसकी पालना करो, उसको संभालो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको आगे बढ़ो, उससे किनारा नहीं करो, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए इन विकारों पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर लो। ये है ईश्वरीय मर्यादा। जब इस मर्यादा को पालन कर, तो उसके लिए नियम बहुत सारे हैं, और कई धारणाएं हैं हमारी। शुद्ध अन्न खाना है, सत्संग करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, ये हम सबके लिए मर्यादाएं हैं। और जितना हम दृढ़ता के साथ अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है, वृत्तियों को अनासक्त बनाना है, बोल में मधुरता लानी है, व्यवहार के अंदर शुद्धता सरलता लानी है, कर्म में कुशलता लानी है, योगी जीवन बनाना है, ये हमारी मर्यादाएं हैं। और इन मर्यादाओं को जिसने पालन किया, पहले इसकी रक्षा करो। इसको कोई भी कहीं से भी लीकेज न हो, कोई मर्यादा हमसे उल्लंघन न हो। ब्राह्मण जीवन में हरेक बाबा के बच्चे को ध्यान देना है, इस शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उनके लिए ईश्वरीय मर्यादाएं क्या क्या हैं। मैं समझता हूं शायद आप सभी बाबा के पुराने बच्चे जो हैं वो जानते हैं, नए हैं ध्यान न भी हो अंडरलाइन करना, अगर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन है तो कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में जो सच्चे सुख का अनुभव है, योग का गहरा अनुभव है, परमानंद की अनुभूति है, नहीं हो सकती। अगर करनी है, अगर परमात्म सुख प्राप्त करना है, भगवान के मिलने का आनंद लेना है, मेहनत से मुक्त बनना है, तो हर ब्राह्मण बच्चे को पहले नंबर में मर्यादा की लकीर पर बहुत ध्यान देना है, उल्लंघन न हो। स्मृति के लिए अंडरलाइन कर लो, स्मृति के लिए हमारी जो याददाश्त शक्ति है उसके लिए मर्यादा है कि कोई भी बीती बातें जो बीत गई हैं उसको फुल स्टॉप लगाओ, उसका कभी भी बार बार चिंतन नहीं करो। बीती को नहीं चितो, लेकिन स्मृति स्वरूप बनो कि एक बाबा की सदा याद रहे, स्मृति के लिए मर्यादा है। स्मृति में केवल बाबा बाबा बाबा, और सच्चे दिल से बाबा याद रहे, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से बाबा को, पहचान है, संबंध है, स्नेह है, सच्चाई है, उसके आधार से हम मेरा बाबा कहते हैं, बाबा हाजिर हो जाता। कहता है मैं हजूर तुम बच्चों के आगे हाजिर हूं, तुम सच्चे दिल से कह के देखो मेरा बाबा है ना, वो करके देखना सच्चे दिल से प्यार से कहो। ये स्मृति के लिए मर्यादा है। अब हमारी दृष्टि जो हम देख रहे हैं, हम सब जानते हैं दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। ये दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध भाई भाई की चाहिए। किसी को भी हम देखें, भले शरीर मेल का है या फीमेल का है, लेकिन आत्मा अपना खेल खेल रही है, आत्मा इसके अंदर है, वो चमकता हुआ सितारा दिखाई दे, बहुत दृष्टि पवित्र और शुद्ध हो, ये है दृष्टि के लिए मर्यादा। हमारी वृत्तियां बहुत चंचल हैं, बैठे यहां है, संकल्प कुछ चल रहा, वृत्तियां कहीं घूम रही हैं। उन वृत्तियों को व्रत से चेंज किया जा सकता है। अगर कोई अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करना चाहता है तो व्रत लेना होगा। व्रत माना प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है, ये नहीं खाना है, तब वृत्तियां चेंज होंगी। नहीं तो वृत्तियां बहुत चंचल हैं। वृत्तियां अनासक्त हों, वृत्तियां उपराम हों, वृत्तियों में वैराग्य हो, कुछ नहीं चाहिए, अनासक्त वृत्तियां हैं। इसलिए वृत्ति की मर्यादा है, वृत्तियां शुद्ध पवित्र बनाने के लिए व्रत लो और अनासक्त उपराम वृत्ति बनाओ। बोल के लिए मर्यादा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ऐसे नहीं जो आया बोलते हैं, जब आया बोलते जा रहे हैं। बोल एक बहुत बड़ी एनर्जी है, इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपने बोल पर बहुत कंट्रोल रखना है। जितने संबंध बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य और संबंध दोनों को बिगाड़ने वाला केवल एक जबान है, इस पर अंडरलाइन करना। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने अपनी जबान पर ही कंट्रोल नहीं कर पाया, दूसरी इंद्रियों पर क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना वो जबान बताती है। देख लिया, पानी आ गया, खा लिया, मार्केट में चले गए, देखा ये तो बहुत अच्छा गोलगप्पा मिल रहा है, खा लो। ध्यान देना, जबान पर बहुत कंट्रोल चाहिए। इसलिए जिसने जबान पर कंट्रोल कर लिया उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और जिसने दूसरी जबान पर बोलने पर कंट्रोल कर लिया उसके संबंध मधुर हो जाएंगे। इसलिए जो बोलना है, जितना बोलना है, युक्तियुक्त बोलो, मधुर बोलो, सम्मानजनक बोलो, जो आवश्यक है उतना ही बोलो, अधिक नहीं बोलो, ये मर्यादा है। अगर ब्राह्मण जीवन में हमें बहुत प्यार प्रेम से संगठन में एक होकर के चलना है, तो जैसे आज बाबा अंडरलाइन करा रहे थे, नम्रता के गुण को धारण करो, नम्रता सबसे श्रेष्ठ गुण है। ऐसे नम्रता के साथ साथ मधुरता भी बहुत आवश्यक है। मधुर बनो, मीठे बनो, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। कभी बाबा ने नहीं कहा मीठे कड़वे बच्चे, कहा है सबको मीठे बच्चे की नजर से देखता है। तो हम सब मिठास को अपनी वाणी में ले आए, जिसको भी बोलें दो शब्द मीठे बोल करके उसका सम्मान बढ़ा दें, सम्मान में रहें, सम्मान देना सीख जाएं। और कर्म के लिए मर्यादा है, कर्म योगी बन करके सुख दो सुख लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो, दुआएं दो दुआएं लो, ये कर्म के लिए मर्यादाएं हैं। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे जितना नियम मर्यादा और श्रीमत को यथार्थ समझकर चलते हैं, उतना मर्यादा रक्षक बन करके हम इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो किसी मर्यादा का उल्लंघन किया तो लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसे चलता है। यज्ञ की रक्षा करने के बजाय वो यज्ञ भक्षक बन जाते हैं, यज्ञ के लिए वो विघ्न रूप बन जाते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस अपने बेहद यज्ञ की, बाबा के यज्ञ की रक्षा करनी है, संभाल करनी है, और उसके लिए अपने बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहना है। सोचने पर अपनी लगाम है, ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं, जो आया चला अंदर अंदर। सबसे बड़ी बीमारी जो दिखाई देती ना वर्तमान समय, अधिक सोचने की, कई ब्राह्मणों को भी हो गई है। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्या इंड होगी, कब होगी उसकी, पूरी पूरी रात कई बार निकल जाता है। कोई ने कोई बात कह दिया अच्छी नहीं लगी, अंदर मन को लग गई जाकर के और बस मन चलने लगा, ये मेरे लिए ऐसे सोचते हैं, मेरे ऐसे, रोएंगे भी, तकिया भी गीली करेंगे, और साथ साथ संकल्पों की क्यों उसको ब्रेक नहीं लगा पाते। कहते हैं हम योगी हैं, राजयोगी माना मन बुद्धि पर नियंत्रण है हमारा, और लेकिन जब मन का चलना शुरू हो जाता है तो ब्रेक ही नहीं रहती, बिना ब्रेक की गाड़ी कहाँ जाएगी। तो आप सब देखना, अपने आप को चेक करना, अगर यज्ञ रक्षक बनना है तो पहले अपने संकल्पों को ब्रेक देना सीखो, जो सोचना है जितना सोचना उतना सोचना, बाकी सब ड्रामा कल्याणकारी है, सब अच्छा होगा। जब ड्रामा का इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया है, फिर क्यों हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, चलो इसका हिसाब किताब, कोई कर्जा है पूरा हो गया, मैंने भी कभी इसके दिल को दुखाया होगा, इसने बदला ले लिया, पूरा हो गया। इसलिए अगर हम अपने संकल्पों को शांत रख करके एक मन को इतना एकाग्र करें जो जब चाहे मन मना भव, तो ये मन मना भव का मंत्र यंत्र बन जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं अपने आप पार हो जाएंगी। लेकिन मन पर बहुत नियंत्रण चाहिए, संकल्प की शक्ति पर बहुत कंट्रोल चाहिए। इसलिए आप सब बाबा के बच्चे, योग सीखा, योग भट्टी किया, लेकिन अपने आप से पूछना, क्या मैं अपने मन बुद्धि का राजा हूं, मालिक हूं, मैं अपनी रक्षा मर्यादा की रक्षा कर सकता हूं, तब तो मैं बाबा के यज्ञ की रक्षक हूं। बाबा ने जहां यज्ञ रचे हैं, जहां जहां यज्ञ हैं, वहां यज्ञ निवासियों की, यज्ञ के वायुमंडल की, यज्ञ के हर सेवा की मुझे रक्षा करनी है, संभाल करनी है। संभालना माना कोई चीज की संभाल कैसे की जाती है, मान लो आपके पास कोई स्टॉक है, संभालने की तरीका क्या है, बार बार उसको चेक करना पड़ता है, चेक नहीं करोगे तो रखे रखे पता नहीं कहाँ चला जाएगा, घुन लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएगी, इसलिए चेकिंग बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण जीवन में हम सब अटेंशन और चेकिंग के पहरेदारों को अलर्ट रखें। अटेंशन है, बार बार अपने पर अटेंशन है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, अटेंशन है कि मेरे से कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न हो, कोई भी ऐसे संकल्प विकल्प न चले जो बाबा के यज्ञ में वो कहीं न कहीं रुकावट डाल दे, विघ्न रूप बन जाए। अगर संगठित रूप में ब्राह्मण आत्माएं एक ही शुद्ध पवित्र संकल्प में रहती हैं, केवल यही संकल्प करें कि मैं बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, डायरेक्ट परमात्मा से शक्तियां मेरे पसार ही हैं, मैं उनके समान परम पवित्र हूं, तो ये पवित्र संकल्पों का आभा मंडल ही इसकी रक्षा करता है। अगर अपवित्र संकल्प हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, विकारी संकल्प हैं, स्वार्थ भावना वाले संकल्प हैं, कई आत्माएं स्वार्थ लेकर के घूम रही हैं, समर्पित होने के बाद भी पैसे के पीछे भाग रही हैं, जो काम करेंगी पैसा दो तो करेंगी, ये काम मेरा कर दे तो मैं करूंगी। बाबा कहता है ये स्वार्थ भावना यज्ञ की रक्षा नहीं, यज्ञ के लिए विघ्न है। हम सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, अपना समझ करके अगर ट्रस्टी बन करके रहते हैं तो यज्ञ की रक्षा अपने आप होती है। तो हम सब बाबा को बहुत रिटर्न करें, जो बाबा ने यज्ञ रचा, हमारा भाग्य बनाया, हमें समर्पित किया, या हम उनके बच्चे बन गए, हम सब बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहें, प्रवृत्ति में रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन वृत्तियां परे रहें, ऐसे बन करके दिखाएंगे तो आप सब बाबा के यज्ञ के रक्षक कहलाएंगे। ओम शांति।